body. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jan Vallabha, Jaya Giribar Dhari. Jaya Gopi Jan Vallabha, Jaya Giribar Dhari. Yasoda Nandana Braj Jan Ranjana, Yasoda Nandana Braj Jan Ranjana, Yasoda Nandana Braj Jan Ranjana, Jamuna Tiravan Chari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें नयन पथे गामी भव तुम्हें जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय गुरु परंपरा की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय संवेद भक्त वृंद की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन श्री श्री श्रीमद भागवत महापुराण की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटेड हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद आठ अध्याय चौदह अध्याय का शीर्षक है विश्व व्यवस्था की पद्धति और आज का श्लोक क्रमांक है छे पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागस यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्वितांस्तै प पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागस यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्वितांस्यतै पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागस यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्वितांस्यतै वैष्णवी वैष्णवी पालयन्ति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पालयन्ति आदेश पूरा करते हैं प्रजापाला विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र यावत अंतम मनु के शासन के अंत तक विभाग सह विभागों में यज्ञ भाग भुज यज्ञों के फल के भोक्ता देवा देवतागण ये अन्य च भी तत्र अन्विता उस काम में लगे हुए च भी तय उनके द्वारा यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं देवता भी इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम 4.2 में कहा गया है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होकर प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे उसी प्रकार से समझा यह परंपरा प्रणाली मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से उसके पुत्र पौत्रों तक चलती है विश्व के शासक परंपरा पद्धति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं जो कोई शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है उसे इस परंपरा प्रणाली में भाग लेकर यज्ञ करने चाहिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की गौरी वैष्णव परंपरा की भांति सारे विश्व में संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं यदि सारे विश्व में तेजी के साथ संकीर्तन आंदोलन फैलाया जाता है तो वे आसानी से तुष्ट किए जा सकेंगे इससे लोग सुखी बनेंगे सुखी भी बनेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगनाधिराज विघ्नान् विघ्नन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वं भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं से कृपा की याचना करता हूँ, जो मुझ जैसे अधम पतित को आज ये श्रीमद भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं इनको हमारे मुख से उसी वाणी को आज प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। इसलिए आप सब वैष्णव वैष्णवीगण परम करुणाशील है, इसलिए मुझ अधम पतित पे ये कृपा करिए, क्योंकि भागवतम के शब्दों को एज इट इज दोहराना एक अपने आप में बहुत बड़ी पुरुषार्थ है। और ये तभी संभव होता है जब ये वैष्णवगण किसी भक्त पे कृपा करते हैं। तो आप सब वैष्णवगण वैष्णवीगण श्रीमद् भागवतम को काफ़ी समय से श्रवण कर रहे हैं और आज जो श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद का चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय का आज छठा श्लोक है। तो ये जो श्लोक है, ये जो आप चैप्टर जो श्रवण आप कर रहे हैं, तो इस चैप्टर का नाम है द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल मैनेजमेंट, विश्व व्यवस्था की पद्धति। आप सब भक्त, किसी के मन में ये प्रश्न आया जो ये चैप्टर आखिर भागवतम के अंदर में क्यों दिया गया है, या ये चैप्टर को भागवतम में क्यों रखा गया है, कोई बता सकते हैं? जहां तक मुझे लग रहा है, ये भागवतम के 335 अध्याय में ये सबसे छोटा अध्याय होगा। इसमें 11 श्लोक मात्र हैं और ये मनु की व्यवस्था को यहां पर मैं दर्शा रहे हैं। मनु की जो वास्तविक व्यवस्था है, लिखा ही द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल मैनेजमेंट, तो मतलब इस यूनिवर्स, जेजेंटिक यूनिवर्स को ठीक तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए भगवान की एक सुव्यवस्थित योजना है, जिस योजना के तहत जो है ना भगवान ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे इस पूरा का पूरा सिस्टम को मैनेज करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्राकृतिक जगत में एक कंपनी है बहुत अच्छा सा मल्टी मीडिया कंपनी, उसका एक सीईओ है और सीईओ के नीचे कई सारे मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स और मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और होंगे असिस्टेंट मैनेजर, फ्यून आदि आदि। ये इतने सारे विभाग क्यों किए जाते हैं? सीईओ उस कंपनी का एक है, लेकिन हर एक टेबल की, हर एक व्यक्ति, हर एक एम्प्लॉय की जानकारी सीईओ के पास होती है। कौन व्यक्ति बैठ करके सैलरी ले रहा है, कौन व्यक्ति काम करके सैलरी ले रहा है और क्या करता है, उसको सब कुछ पता होता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की ये यूनिवर्स को चलाने के लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। भगवान एक जगह पे रहते हुए पूरी व्यवस्था को बड़े ही सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको लिखते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसको बहुत ही बढ़िया से बात बताते हैं, जो इस विशाल यूनिवर्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए भगवान की शक्ति, ये जो आप देख रहे हैं मनु या मनु के पुत्र, देवता इंद्र और मनवंतर अवतार, ऋषि, ये सब है कौन? भगवान के अंग हैं। भगवान को ही सपोर्ट करने के लिए ये सब नियुक्त किए गए हैं। इसलिए मनु की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां पर मैं 5 जो है ना, 5 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज की नियुक्त की जाती है हर मनवंतर में। आप सब भक्त कई वक्ताओं से ये श्रवण कर चुके हैं, मनु, मनु जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो 6 तरीके से अवतार होता है, उसमें एक अवतार है मनवंतरा अवतार। तो भगवान ही मनवंतर मनु के रूप में प्रकट होते हैं इस धरती पे। भगवान इस जगत के सुचारू रूप से चालू करने के लिए मनु के रूप में यहां पर में प्रकट होते हैं। और ये मनु करते क्या है इस जगत में? तो कह रहे हैं मनु धर्म की पुनः स्थापना इसको करते हैं। तो धर्म के जो 4 पिलर हैं, सत्यता, शुचिता, तपस्या और दया, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए मनु आते हैं। मनु की उत्पत्ति कैसे होती है, आप सब भक्तगण इसको जानते हैं। भगवान के जो 6 अवतार में से एक पुरुषा अवतार होता है। पुरुषा अवतार में गर्भोदक्षायी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी को आदेश मिलता है तपस्या करने का और वो तप करके भगवान को बहुत प्रसन्न कर लेते हैं। 2.9 भागवतम के अंदर में आप भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं ब्रह्मा जी से, जो भगवान स्वयं हंसते हुए आते हैं और ब्रह्मा जी का हैंडशेक करते हैं।
ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव होता है जो भगवान स्वयं आकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनका बड़ा ही जो है ना हैंडशेक करते हैं। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है तो हैंडशेक करता है और शाबाशी देते हैं और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं आप इस सृष्टि का पालन करो। और ब्रह्मा जी उनसे विनती करते हैं, हे भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा जरूर करिएगा, जो अहम मैं सृष्टि करता हूं, सृष्टि अहम मैंने सृष्टि करता करता अहम इति मन्यते, ये भाव मेरे अंदर में न आए, ये मेरे ऊपर कृपा करिएगा। तो कह रहे तथास्तु, आपको इस तरह का भाव नहीं आएगा। और ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मानस पुत्र चतुष्कुमार की उत्पत्ति करते हैं, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार। उसके बाद फिर रुद्र जी की उत्पत्ति होती है, नारद जी की उत्पत्ति होती है, कई तरह के चीजों की उत्पत्ति होती है। रुद्र के द्वारा सृष्टि करने से इस पूरे जगत में बबंडर सा मच जाता है, करे अभी फुल स्टॉप, आप थोड़ा दिन तपस्या करो। उसके बाद ब्रह्मा जी देखते हैं इस जगत में सृष्टि का कार्यक्रम जो मुझे सौंपा गया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ठीक से तो चल ही नहीं रहा है, सभी के सभी बैरागी संत निकल के आ रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक युक्ति निकाली, क्योंकि चार हेड है ना, तो चार हेड में तो बुद्धि तो बड़ी तीव्र होगी, तो उन्होंने दिमाग लगाया अपने बाम भाग से एक शत्रुपा स्त्री की उत्पत्ति करे और दाएं भाग से स्वयंभू मनु को प्रकट किए, समझ रहे। तो ये दोनों एक देखा जाए तो दोनों भाई बहन है, क्योंकि एक ही पिता से उत्पत्ति हुई है, लेकिन एक स्त्री का पुरुष के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ जो आकर्षण होता है, तो ये दोनों मिथुनी भाव में संसर्ग हो गए। और इसके बाद जो है इस जगत का जो है यूनिवर्स का जो है पालन पोषण बढ़िया से ठीक से चलने लगा। तो मनु और मनु के पुत्र और पौत्र मिलकर के ही ये 14 मनु होते हैं। मनु जो मानव का जनक होता है और मनवंतर, मनवंतर का मतलब होता है जो मनु की आयु, एक मनु की आयु जो होती है 71.44 71.44 चतुर्युग, और एक चतुर्युग में होता है 43,20,000। 43,20,000 को अगर आप 71.44 से गुना कर देंगे तो 308,620,800 होंगे एक मनु की आयु है। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का कार्यकाल समाप्त होता है और भगवान की भी उत्पत्ति होती है मनवंतर अवतार। तो ये 5 तरह के जो लोग हैं मनवंतर में, तो कह रहे स्पेसिफिक ड्यूटीज द 6 टाइप्स ऑफ पर्सन इन मनवंतराज, जो इसके विशेष किस तरीके की ड्यूटी है इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। जो 4 से लेकर के 7 तक जो ये श्लोक है इसमें इसी को बताया गया है, अभी आगे एक श्लोक और आएगा इसमें भी इसी तरह की बात है। तो मनु का काम होता है इस जगत में फिर से धर्म की स्थापना करना, और डेमी गॉड्स देवता का काम होता है यज्ञ के फल को भोग करना, यहाँ पर मैं परपट में और अनुवाद में भी लिखा है, और यज्ञ के वितरण करना। और मनु पुत्र सन ऑफ मनु का जो काम होता है जो भगवान के आदेश को पालन करना और यज्ञ के फल का भोग करना। तो यज्ञ के फल का भोग कौन कौन करता है, देवता और ये मनुपुत्र, और यहाँ पर लिखा है ना देवता और मनुपुत्र तब तक जो है, ये मनुपुत्र तब तक रहते हैं जब तक, यहाँ पर लिखे है ना, जब तक जो है ना एक मनु का उनका काल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है ये मनुपुत्र रहते हैं। और सूर ईश्वर इंद्र को नियुक्त किया गया, 4th पर्सनैलिटी है जो भग इस तीनों लोकों के जो ऐश्वर्य है उसका उपभोग करने के लिए इंद्र को नियुक्त किया गया है, और इंद्र की सेवा है इस जगत में बारिश आदि दे करके वर्षा करके इसका जो है ना पूरे लाइफ को जो जीवन को जो है आगे बढ़ाया जाए। और ऋषि ऋषि का जो सेवन चीफ ऋषि सप्तर्षि होते हैं उनका काम होता है प्रत्येक चतुर्युग के अंत में सनातन धर्म की पुनः स्थापना करना, और छठा पर्सनैलिटी होते हैं हर मनमंत्र में जो है स्वयं भगवान का जो है मनमंत्र इनकार्नेशन होता है। तो वो क्या करते हैं, तो ये जो पांच आपने देखा मनु देव मनु पुत्र इंद्र और ऋषि, इसकी नियुक्ति करते हैं कौन होगा अगला मनु, ये क्या होगा, ये सब सारे के सारे काम ये करते हैं। और मनु के जो ये भगवान के जो मनमंत्रा अवतार होता है उनके आदेशों का पालन ये सारे लोग करते हैं पांच पर्सनैलिटी। इसको समझ गए बात लोग, मनु का यही मेन होता है। यहां पर मैं एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, जो इस जगत में जो सिस्टम बड़ी सुचारू रूप से चलता है ये कब तक चलता रहता है, जब तक भगवान की सत्ता को कोई मानता है, भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, जिनको जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज दी गई है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज दी गई है, उनको एज इट इज जो फॉलो करते हैं कर रहे हैं, तभी जाकर के ये व्यवस्था अच्छी तरीके से चलती है। लेकिन ये व्यवस्था में तब प्रॉब्लम आता है जब इसमें कोई व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है और गॉडलेस मैनर का हो जाता है, जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और भगवत विहीन हो जाता है, तब जाकर के इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आज जो हम सब इस जगत में फंसे हैं, अपने आप को भगवान या भगवान के जैसे भाव में, भगवान जैसे इंजॉय कर रहे हैं हम भी इंजॉय करेंगे, इसी भाव के चक्कर में आज हम यहां पे फंसे हुए, तभी जाकर के इस जगत में ये प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा। तो यहां पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये एक परंपरा से चल रहा है। आप लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के में प्रथम श्लोक आपने सुना ही है, जो कह रहे हैं प्रथम श्लोक क्या है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्यमं विवस्वान मनवि प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। ये जो सिस्टम है भगवान से जो चली आ रही है, ये विवस्वान जो सूर्य के सूर्य हैं, सूर्य का ही एक नाम विवस्वान है, वहां से जो उन्हें मनु को दिए, इक्ष्वाकु को दिए, उसके पुत्र ऐसे करके ये परंपरा सिस्टम चल रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषो विदु सौ काले ने महता युग नष्ट परंतप। जो इस जगत में जो ये सब जो सिस्टम है सारे परंपरा से चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो कोई भी चीज ऐसे ही बीच में आकर के टपक रहा है। अगर कोई सिस्टम को आपने परंपरा से स्वीकार किया है तो क्या होता है, परंपरा से जो चीज चली आ रही है ना उसमें ऑथेंटिसिटी होती है, उसमें नित्यता होती है, उसका सही होने का ये होता है, सही होता है। लेकिन आप बिना परंपरा से कोई चीज अगर लेंगे तो उसमें किसी भी तरह की सत्यता हो भी सकती है, सत्यता नहीं भी हो सकती है, बट गारंटी नहीं है। इसलिए हमें कोई भी ज्ञान अगर अर्जन करना हो तो वो परंपरा से ज्ञान आता है। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में रह करके अगर हम ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे तो वो ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। जैसे आप लोग पद्म पुराण में जानते हैं, जो संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फलामता, संप्रदाय जो होती है जो परंपरा से गुरु परंपरा से चलती आ रही है, चार ऑथेंटिक परंपरा है जिसके द्वारा जो मंत्र निर्धारित है उसके उसी से मंत्र लेने से वो मंत्र का फल होता है। अगर परंपरा से हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है उससे बुद्धि विवेक ज्ञान हमारी चेतना जो है उद्घोष होती है, हम किसी चीज को समझ पाते हैं। इसलिए परंपरा से हमें कोई चीज ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और विश्व की जो शासन व्यवस्था है ना ये भी परंपरा से चली आ रही है। कोई भी सिस्टम आप देखें ना एकदम परंपरा से, आप जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी में टेम्पल है, जितने पुजारी आप देखेंगे सारे के सारे वंश दर वंश दर वंश दर एक परंपरा से चलता आ रहा है। जिनको सेवा जिस वंश को दी गई है उसी वंश के हाथ में है, क्योंकि परंपरा से जो चीज चलता है ना वो सिस्टमेटिक एक अच्छी तरीके से सुचारू रूप से उसको चलता है, उसको उस चीज का अच्छा नॉलेज होता है। तो भगवान के आदेशों का पालन परंपरा से जैसे आता, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, और नारद जी ने ऐसे नीचे बहुत सारे ऋषि महात्मा ऐसे आचार्यों को ज्ञान देते 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 आज ये श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज के होते होते हम सब भक्तों के पास ये ज्ञान है। तो जो ज्ञान भगवान ने दिया वो ज्ञान एज इट इज हमारे पास है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उन कोई कम ये क्या बोलते उसको पत्रकार लोग जो है उनके पास आए, करे श्रील प्रभुपाद जी आप जो बात बोलते हो क्या वो सही है, करे हमारी बातें या हमारे भक्तों के द्वारा जो भी बातें हैं वो पूर्णतः 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो ज्ञान है, ये गुरु परंपरा पे आधारित है। हम कोई भी ज्ञान को अपने आप नहीं उठाते हैं कहीं से, हमारा वैदिक सिस्टम से जो हमारा शास्त्र वैदिक पुराण है उससे हम कोई बात लेते हैं, जो भगवान ने वैदिक शास्त्र पुराण दिए हैं, अपने मन से कोई बात नहीं उठाते। अब मार्केट में कई लोग, आप पूरे विश्व में प्रचार भ्रमण करने वक्त में पता चलता है कई लोगों को ये पता होता है तुलसी महारानी को रविवार में जल नहीं डालना चाहिए, बहुत ऐसे माताएं लोग गांव घर में आपको मना करेंगे, भाई कौन सी शास्त्र में ये बात लिखा है तुलसी महारानी को जल नहीं देना चाहिए, तो उसका कोई आधार नहीं है। अगर किसी बात का रेफरेंस नहीं है तो फिर वो कोई उसमें कोई सत्यता नहीं है। तो परंपरा से जो ज्ञान आता है ना वो हमारी ज्ञान जो है अज्ञान के चक्षु को खोलता है, हमारी चेतना को भगवान में लगाता है। ये परंपरा कोई ऐसे नहीं लागू किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता की अध्याय को शुरू करने से पहले उन्होंने एक गुरु परंपरा दिया हुआ है। आप लोग भगवत गीता को देखे होंगे, क्यों दिए हैं गुरु परंपरा? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया जो इस यूनिवर्स अब को जो जितना विश्व में है 700 एडिशन है भगवत गीता के, 700 लोगों ने भगवत गीता को लिखा है, इवन मुसलमान ने भी भगवत गीता को लिख दिया है, समझ रहे हैं बात? और मुसलमान भी भगवत गीता को लिखने के बाद लेकिन उससे भगवान कृष्ण के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, अपना पेट का पालन कर रहे हैं, अपना पूरा क्या बोलते हैं उसको ऐश्वर्य भोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते। ऐसे ऐसे लोग हैं, खास करके इंग्लिश में जो भगवत गीता है, मैक्सिमम इंग्लिश में भगवत गीता परंपरा सिस्टम से नहीं है। तो जो चीज परंपरा से नहीं आएगा वो हमारे हृदय की चेतना को, कलुषित चेतना को शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो ज्ञान है ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए हमारी चेतना को शुद्ध नहीं करेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप है हमें यहां देने की नितांत आवश्यक था, इसलिए हमने ये भगवत गीता ले, क्योंकि पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा इतनी सारी भगवत गीता मार्केट में, श्रील प्रभुपाद जी आप क्यों एक भगवत गीता और एक बना रहे हो? तो श्रील प्रभुपाद जी ये आंसर देते हैं, भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये परंपरा से आया हुआ है। इस ब्रह्मांड के कोई भी एक ऐसा कोई भी प्रश्न बता दो जिसका उत्तर भगवत गीता के अंदर में न हो। भगवान ने इसको ऐसा पैकेज बनाया, टैबलेट बनाया हुआ है, इसमें सारे चीज डला हुआ, इसलिए भगवत गीता का हमें पठन पाठन नित्य करना चाहिए। तो परंपरा से जो सिस्टम आता है भगवत गीता भागवतम, ये जो ज्ञान भगवान के आदेशों को पालन करने के लिए ये सिस्टम यहां पर में लागू किया जाता है। तो यहां पर में एक बहुत ही सुंदर शब्द जो है, जो यज्ञ का भाग जो ये देवता और मनुपुत्र जो है उपभोग करते हैं, तो ये जो मनु है, तो मनु एक मनु संहिता एक ग्रंथ निकली, मनु स्मृति एक ग्रंथ निकली है, खास करके गृहस्थों के लिए जो है ना यज्ञ। इस बात को जो है श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं, जो यज्ञ का भाग, जो कौन सा यज्ञ नितांत आवश्यक है, तो कह रहे हैं गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ नितांत आवश्यक है जिसको करना चाहिए, और उसको करने से कह रहे हैं नित्य, मतलब डेली और नियत समय पे। जैसे गायत्री होता है, गायत्री का प्रभुपाद जी ने 6:12:6 का टाइम दिया है, अगर कोई व्यक्ति नियत समय पे गायत्री करता है ना, तो उसमें एक अद्भुत शक्ति आती है। लेकिन गायत्री तो ये हम पर में लोग, हमने तो यहां तक देखा है मंदिर में गायत्री लोग 8 बजे सुबह में भी करते हैं, समझ रहे हैं, रात को 9 बजे भी करते हैं। तो गायत्री का एक पर्टिकुलर टाइम, किसी चीज को अगर जिंदगी में भगवान के और भगवान के जो शुद्ध वैष्णव भक्त हैं उनके आदेशों का अगर अक्षर सा पालन होता है, तो उसमें एक अलग इफेक्ट होता है, उससे हमारा जिंदगी परिवर्तन बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज तीव्रेन तीव्रता से होती है। तो ये 5 यज्ञ की प्रधानता दी गई है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ स्तुतर्पणम होमो देवो बलिर्भर्तो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। मनुस्मृति में ये 5 यज्ञ की प्रधानता है। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है धर्म शास्त्रों को पढ़ना, और धर्म शास्त्रों को पढ़ करके उसको क्या करना, अपने पास रख लेना, दूसरे को भी पढ़ाना, दूसरे को भी प्रचार करना। अगर धर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसका प्रचार करने, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जाय, और करे जन्म सार्थक करो कर पर उपकार। तो जब शास्त्र पढ़ते, तो शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, शास्त्र पढ़ करके ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करके ज्ञानी कहलाने के लिए नहीं है, तभी तो अहंकार विमूढ़ आत्मा हो जाएगा फिर। क्योंकि जब व्यक्ति नॉलेज गेन करता है ना किसी जगह से, तो उसमें 1 get 1 फ्री होता है, समझ रहे ना। एक चीज ज्ञान अर्जन के लिए हमने शास्त्र पढ़ा, लेकिन उसके साथ ऑटोमेटिक अहंकार आता है, मैं ज्ञानी हूं, मुझे तो 18,000 श्लोक भागवतम की याद है भाई, 700 श्लोक तो मैं यू चुटकी में पार्क में घूमते घूमते बोल देता हूं। ये बहुत बड़ा अहंकार होता है। एक बार की बात है, हिजोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज राधा पार्थसारथी टेम्पल दिल्ली में थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति आया दार्शनिक टाइप का, और बता मुझे तो 700 के भगवत गीता याद है, बहुत समय पहले की बात है। तो भक्त लोग जो थे वो बड़ा विस्मय, 700 श्लोक याद करें तो बड़ा विलक्षण जीव है, इसको तो गुरु महाराज से जो है अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट मिला देना चाहिए। तो सभी मिलकर के उनको गुरु महाराज के पास ले गए, और गुरु महाराज के पास जब गए तो महाराज जी बोलते हैं, बहुत सुंदर, आपने 700 श्लोक ज्ञान कर लिए, और 700 श्लोक के एक श्लोक के एक शब्द पे आपने जिंदगी जिया। अगर 700 श्लोक याद करके एक श्लोक पे भी हमने जिंदगी नहीं जिया, तो वो 700 श्लोक हमारी जिंदगी में खाक है, श्रम ए भी केवलम। शास्त्र का पढ़ना, भक्ति करना, ये मतलब नहीं होता जो मैं बड़ा बड़ा शास्त्रार्थी हूं शास्त्रार्थ करने के लिए। भक्ति करने का मतलब होता है हमारे अंदर में अगर विनम्रता नहीं आई, हमारे अंदर में सरलता नहीं आई, लोगों के प्रति जीवों के प्रति दया नहीं आई, तो किस चीज की भक्ति। इससे अच्छा तो आम जनता है। अगर हम भक्ति करके भी क्रूर रहे, हमारे अंदर में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यही पैरामीटर है। भक्ति में आने के बाद अगर हमारे अंदर में यह परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये शास्त्र का अध्ययन तभी फलीभूत होता है, शास्त्र का अध्ययन भगवान को प्राप्त करना है, न कि ज्ञान का बंटवारा करना है, समझ रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्त किए लोगों को भागवत भक्ति में नियुक्त करना, यही परंपरा है, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं ये ब्रह्म यज्ञ शास्त्र को पढ़ना, अध्ययन करना और लोगों तक इसको फैलाना, ये सभी को करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ तर्पण होता है, जैसे पिंड दान होता है, श्राद्ध होता है, ये सब चीज बहुत जीवन में उपयोगी चीज है। इसको व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जब भी कभी आप मुख्य प्रमुख नदियों में स्नान करते हैं ना, तो वहां पे जरूर अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। आप जल लेकर के आप दे सकते हैं स्वयं, अगर मंत्र आता है तो बहुत सुंदर, नहीं मंत्र आता है तब भी पितरों को संबोधित करके उनको देना चाहिए उस नदी का जल। इससे क्या होता है, पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा मिलती है और व्यक्ति सारे अपुलेंस को प्राप्त करता है। तीसरा, देव यज्ञ। देवताओं का, देवता बहुत बड़े ज्ञानी हैं। देवता जो है, देवताओं की जो योनि होती है ना, वो मनुष्य की योनि से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा ज्ञानवान होती है, तभी तो वह देवता बने हैं आज, नहीं तो हम जैसे थोड़े मनुष्य बनते। तो देवता बनना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए देवताओं का सत्कार करना ये हमारे एक मानव का स्वभाव है। लेकिन मैंने देखा है बहुत ऐसे भक्त जो कृष्ण भक्ति में लगता है, वो देवता को वैल्यू ही नहीं देता। देवता जहां भी स्थापित किए गए, ये देवता कोई और नहीं है, ये देवता भगवान के अंग उपअंग हैं, तभी तो भगवान का एक नाम है सर्वदेव। सर्वदेव का मतलब क्या होता है, जो सारे देव जहां पे एक जगह पे इकट्ठा हो, और वो कहां होते हैं, भगवान श्री कृष्ण, समझ रहे हैं। तो इसलिए देवताओं को नमस्कार करना जिंदगी में होना चाहिए, कहीं भी देवता का मंदिर दिखे उनको प्रणाम करना चाहिए, मुख्य नहीं मानना चाहिए। मुख्य तो हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करना, उनकी सेवा में नियुक्त होना, लेकिन देवता का अनादर नहीं करना है, देवता की सेवा करना, उनसे भगवान की भक्ति में हमें लगाए, इसके लिए अपने आप को लगा के रखना। फिर भूत यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, भगवत गीता के अंदर में भी बताया गया, द्रव्य यज्ञ, हमारे द्वारा जो ये अन्नों की उत्पत्ति होती है, उस अन्न से दूसरों को उपकार करना, दूसरों को खिलाना। और पांचवा है अतिथि यज्ञ। हमारे घर पे कोई अगर अतिथि आ जाए, तो अतिथि अगर दुश्मन भी आ जाए, तो दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो अतिथि ये सोचने पे मजबूर हो जाए, जो मैं इसका दुश्मन हूं कि दोस्त हूं भाई, इस ऐसा व्यवहार होना चाहिए। अगर कह रहे हैं घर में नहीं कुछ हो तो कम से कम पानी देना, पानी भी नहीं है तो कम से कम मीठा वचन तो बोल सकते हैं। तो ये पांच जो है यज्ञ, महायज्ञ है, जिसको करना नितांत आवश्यक है। लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आचार्य हैं, वो कह रहे हैं पांचों यज्ञ या जितने भी यज्ञ है, इस यज्ञों में जो सुप्रीम यज्ञ है, और जिस यज्ञ, जिस युग में हम सब जी रहे हैं, उसको बोला जाता है कलयुग। तो इस युग का जो प्रवर्तन धर्म है वो है संकीर्तन धर्म। तो यहां पर मैं श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट किए हैं, जो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो ये भागवतम के एकादश स्कंद का पांचवा अध्याय का 32 नंबर श्लोक है, जिसमें करभाजन ऋषि जो है महाराज निमि को उपदेश देते हैं, कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्राय यजन्ति ही सुमेधस। इस जगत में कलयुग में, खास करके कलयुग बहुत बड़ा गोल्डन युग है। क्यों? क्योंकि पतित पावन चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है, जो आज से 537 वर्ष पहले कलकत्ता के नदिया डिस्ट्रिक्ट में मायापुर में जो है भगवान का जन्म हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और हमारे परंपरा के आचार्य हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें संकीर्तन युग में, इस संकीर्तन में लगे जाना चाहिए। कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम, कह रहे हैं ये भगवान के जो कृष्ण शब्द है उसका जो नाम है त्वसा, भगवान की जो कांति है वो क्या है, अकृष्णम। भगवान तो अवतार लेते हैं कलयुग में, लेकिन अकृष्णम, कृष्ण तो श्याम वर्ण काले हैं, लेकिन इस बार आए हैं अकृष्णम गोल्डन फॉर्म में। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, हमने अपने सारे पार्षदों के साथ आए हैं और क्या करने आए हैं, इस जगत में संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए आए हैं। संकीर्तन यज्ञ इस जगत में सबसे बड़ा यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ में क्या चीज होता है मेन मुख्य, इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट चीज होता है भगवान के दिव्य नामों का जो है एक साथ में जो है ना वैष्णवों के साथ मिल करके, हम लोग जो है ना वैष्णवों के साथ मिल करके क्या करते हैं, संकीर्तन का जो है हरि हरि बोल, हरे कृष्ण महामंत्र का, ये सब चीज का जो है उच्चारण करते हैं। तभी तो ये संकीर्तन का युग है। तभी तो आप देखिए जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए तो उन्होंने कहां से शुरू किया जर्नी, पार्क में संकीर्तन से शुरू किया, अकेले संकीर्तन कर रहे थे, उनका उच्चारण कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये हमारे भगवान के आदेश है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। और ये जो मनु सिस्टम लागू होता है ये भगवान के आदेशों का पूरा करने के लिए हम सबको ये नितांत आवश्यक है कलयुग में। यहां पर मैं श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं, जो कोई शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है उसे इस प्रणाली सिस्टम को अपनाना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बातों को जो है हमें एज इट इज फॉलो करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो हमें दिए हैं उनका मुख्य जो पांच मुख्य चीज है चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। जो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज जी बताते हैं, करे साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, ये पांच मुख्य चीज है। और सकल साधन श्रेष्ठ ऐ पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय ऐ पांचेर अल्प संग, इस पांचों का अगर व्यक्ति अल्प संग थोड़ा सा भी संग कर लेता है ना तो उस भक्त के जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए साधु संग करना चाहिए। साधु, अब साधु किसको बोलते हैं, तो साधु की परिभाषा बता रहे हैं स्कंद पुराण में, उपकुरियात निराकांक्षो यह साधु रित तारियते, करें जो किसी दूसरे व्यक्ति का उपकार करे और निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई अपना हेतु ना हो, जो मैं इसका उपकार कर रहा हूं तो मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा कृष्ण का चिंतन कर रहा हो, भगवान का चिंतन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति साधु स्निग्ध साधु का संग करना चाहिए। तभी चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज बता रहे ऐसे साधु का संग करने से हमारे जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कह, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। लव का मतलब क्या होता है, प्रेम। लव का मतलब होता है एक सेकंड का चौदहवा भाग। एक सेकंड तो वैसे ही छोटा है और उसमें भी चौदह भाग कर दीजिए, उतने देर के लिए भी अगर हम साधु संग कर लिए ना तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। एक साधु का तो उसके जिस खटिया पे साधु सोता है उसमें खटमल भी साधु का संग करता है, लेकिन खटमल में परिवर्तन नहीं होता है, संग तो वो भी करता है। संग का मतलब ये नहीं होता है जो साधु के साथ रहना, साधु के बातों को, साधु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज जिंदगी में फॉलो करना, उसको जिंदगी में उतारना, इसी को बोलते हैं साधु संग। साधु के साथ घूमना साधु संग नहीं है। साधु क्या हमें आदेश दे रहे हैं उस आदेश को हमें पालन करेंगे तभी जाकर के हमारे जिंदगी में परिवर्तन होगा। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सबको हरिनाम दिए हैं, हरिनाम। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग पावन जो है ये युग अवतार है भगवान, ऐसे भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। हमारे आचार्य हैं जो पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार मोसम पतिता प्रभु न पैबे आर हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपाव लोकन करा आमी बर दुखी दया कर सीतापति अद्वैत गोसा तव कृपा बले पाए चैतन्य निता। ये सब भगवान के पार्षद है, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ लोकनाथ गोस्वामी अंग पार्षदों के साथ भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं कृपा देने के लिए। भगवान जो नाम औषधि ये भव औषधि जो भव में फंसे हुए बड़े बीमारी से ग्रसित है उसका औषधि लेकर के नाम लेकर के आए हैं भगवान का नाम। और भगवान का नाम जो है दिए देने के लिए औषधि लेकर के आए हैं। तसरीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्रद्धा से उनको मांग लो ऐसे भव औषधि को। तो इस जगत में अगर नाम का प्रभाव हमारे जिंदगी पे जल्दी से हो तो इसके लिए श्रील कृष्णदास कविराज जी सॉरी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हरिनाम चिंतामणि में एक श्लोक बोलते हैं, कह रहे साधु संग सुनिर्जन निज दृढ़ भाव ऐ तीन बले लभी महिमा स्वभाव। साधु संग करना चाहिए और सुनिर्जन जगह पे स्थान, निर्जन निर्जन मतलब कोई नहीं रहता हो। आप देखें बड़े बड़े आचार्य हुए उनके एक एक भजन कुटीर होते हैं। अब देखे हैं श्री सनातन गोस्वामी का नंद गांव में जाकर के देखिए 25 फीट जमीन के नीचे जाकर के जो है उनका भजन कुटीर है। श्री रूप गोस्वामी पाद बड़े बड़े जितने भी आचार्य हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर देखिए सबके जो है भजन कुटीर है। एक निज स्थान पे भजन करना उससे क्या होता है वो जगह शुद्ध होता है वहां का क्लाइमेट शुद्ध होता है वो हमें सहयोग करते हैं भगवान की भक्ति में। इसलिए निर्जन निर्जन का एक मतलब और होता है ऐसे भक्तों का संग नहीं करना जिसकी भगवान की भक्ति में अनुरक्ति ना हो। मान लीजिए कोई भगवान के भक्त हैं ऐसे भक्त का संग करने फिर भी निर्जन ही। और तीसरा चीज बता रहे हैं निज दृढ़ भाव हमारा भगवान के प्रति विश्वास होना और दृढ़ संकल्प होना जो हमें एक दिन नाम में इतनी शक्ति है इस महिमा को समझते हुए भगवान भगवान हमें नाम का उच्चारण करेंगे नाम जप करेंगे तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। कलयुग सिर्फ नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरत पारा। कलयुग में केवल और केवल नाम की महिमा है क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हैं। भगवान ने नाम में अपने से ज्यादा ज्यादा शक्ति दयाल दे दी है। इसलिए हमें इस धरती पे सबसे ज्यादा क्या अर्जन करना चाहिए नाम। तभी तो चैतन्य महाप्रभु लखपति के घर में जाकर के प्रसाद लेते थे किसी दूसरे के यहां नहीं लेते थे। लखपति मतलब 64 वाला जपने वाले। तो नाम धन, नाम धन इस जगत में हमारा बेड़ा पार कर ले। सबसे बड़ा धन क्या है नाम धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा बाई कह रहे हैं भगवान के अनन्यतम वैष्णव भक्तों में से, जो राम रतन धन यही धन है, भगवान की भक्ति ही धन है, भगवान का नाम ही हमारा धन है। और इतने सारे लोग इस ब्रह्मांड में जो अपनी सारी सुख संपत्ति को छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रज वृंदावन धाम में आए, तो उनका क्या धन है? एक ही तो धन है, वो है नाम धन। नाम धन इकट्ठा करके ही हम भगवत धाम को जा सकते हैं। यही एक पुल है जो इस भव सागर को पार करने के लिए ऐसा सेतु तैयार करे जो डायरेक्ट लैंडिंग हो उस सेतु का कहां पे? गोलोक वृंदावन धाम भगवान के चरणों में। और वो है राम नाम की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम धन को प्राप्त करें आचार्यों से, भगवान की भक्ति को प्राप्त करें आचार्यों से और इसका प्रचार करें। प्रचार अगर नहीं करेंगे कृष्ण भक्ति, ये जो शासन व्यवस्था है, जो प्रणाली सिस्टम है, उसको आगे के आने वाले जेनरेशन तक जो है इसका वितरण करें, तो प्रचार मुख्य है। चाहे भगवान के ग्रंथों का बुक वितरण, चाहे भगवान के कृष्ण कथा का प्रचार, या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं जो प्राण ऐसे यार से ही हेतु प्रचार, अगर जीवन में शरीर में अंतिम क्षण तक एक कतरा ब्लड अगर शरीर में बचा हुआ है ना, तब तक हमें प्रचार करना चाहिए। गली गली नगर नगर शहर शहर हमें प्रचार करना चाहिए। हमारे गुरुदेव बताते हैं प्रचार उस वो व्यक्ति भी कर सकते हैं जिसको अनपढ़ हो, गवार हो, केवल हरिनाम तो आता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का ही तो प्रचार करना है। हमारे आचार्य तो यही बता दे, हम यही कृष्ण भक्ति का प्रचार जो चैतन्य महाप्रभु हमें रागानुगा भक्ति साधना भक्ति का ज्ञान दिए हैं, इसी को आगे प्रचार करना है। इसमें कोई फेर बदल नहीं करना है, परंपरा सिस्टम। अपना मन से कोई ऐड करेंगे ना तो ये सिस्टम फिर बिगड़ जाएगा। तो इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। आज के श्लोक में हम यही मनु के सिस्टम को समझे, उनका कार्यकलाप समझे और नाम की महिमा जो यहाँ चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, तो हमें माफ करिएगा, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिद्धवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पर्सनली पूछ लीजिएगा।